बाद में बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड सुनाई दे रहा होगा। हरे कृष्णा, सो वी वेलकम ऑल द डिवोटीज टू दिस इवनिंग फॉर श्रीमद् भगवद्गीता क्लास। तो क्लास विल बी एक्चुअली इन हिंदी, सो वी नीड टू स्पीक इन हिंदी, बट नंदलेस यू नो आई हैव वन कलीग ऑफ माइन अमर एंड यू नो इज फैमिली हुआ जॉइंड अस टुडे, सो वी वार्मली वेलकम देम बाय अवर ट्रेडिशनल स्टाइल बाय थ्री टाइम चैंटिंग लाउडली हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
तो हम उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप श्रीमद् भगवद्गीता के क्लास में आ जाए हैं। क्लास शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कीर्तन करेंगे, सो आप कृपया दोहराने का कोशिश कीजिए।
हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत सीता,
चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता,
चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता,
चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता,
हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता,
हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता,
हरि गुरु
रघुनाथ,
श्री रूप
सनातन भक्त रघुनाथ,
Thank you.
नमस्कृत्यम्
नारायणं नमस्कृत्यम्
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जायमुदीरये
ततो जायमुदीरये
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च
देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय
नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय नमो नमः
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य
ज्ञानांजनशलाकय
ज्ञानांजनशलाकय
चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः
तस्मै श्री गुरुवे नमः
नमः ॐ विष्णुपादाय
ॐ विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले
कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत
श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामी नीति नामिने
स्वामी नीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे
नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे
गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी
निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे
पाश्चात्य देश तारिणे
पंचतत्वात्मकं कृष्णं
पंचतत्वात्मकं कृष्णं
भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं
भक्तावतारं भक्ताख्यं
नमामि भक्तशक्तिकं
नमामि भक्तशक्तिकं
हे कृष्णा करुणा सिंधो
हे कृष्णा करुणा सिंधो
दीनबंधो जगत्पते
दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत
गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमोस्तुते
राधा कांत नमोस्तुते
भक्त कांचन गौरांगी
भक्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी
राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वभानु सुते देवी
विश्वभानु सुते देवी
प्रणमामि हरि प्रिये
प्रणमामि हरि प्रिये
जय श्री कृष्ण चैतन्या
जय श्री कृष्ण चैतन्या
प्रभु नित्यानंद
प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधर
सादि गौर भक्त वृंद
सादि गौर भक्त वृंद
वांछाकल्पतरुभ्यश्च
वांछाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यैव च
कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः
वैष्णवेभ्यो नमो नमः
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण सम उपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और कथा शुरू करने के पहले मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना चाहूँगा और आप सबकी कृपा की भी याचना करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम कुछ दो शब्द कह सकें। हालांकि हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है, पर हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं सभी भक्तों के खुशी के लिए और हमारे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। हम ये भगवद्गीता जो क्लास करते हैं उसका केवल एक ही कारण है कि हम अपना जो चित्त है उसको शुद्ध करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरा अन्य कोई और इसका कारण नहीं है। और आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्त लोग हैं जो आई थिंक नए आए हैं या पहली बार आए हैं। जैसे मैंने बताया अमर और उनका परिवार पहली बार आया है। और भी कोई ऐसा जन है जो पहली बार आए हैं हमारे प्रोग्राम में? हरे कृष्ण, सो हम आपका स्वागत करते हैं। हम इनका स्वागत करेंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल।
हालांकि कुछ भक्त अभी छुट्टी पे चले गए हैं और कुछ नए लोग आए हैं। सो ये जो कथा है हम हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी में इतना अच्छी तरह से बोलने की आदत नहीं है, और जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में कहना पड़ता है, तो कहीं कुछ त्रुटि हो तो ज़रा माफ़ कीजिएगा। पर मैं हमेशा जब भी कथा करने के पहले एक चीज़ अपने आप को यू नो रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं कि याद कराना चाहता हूँ कि हम जब भी इस तरह के सत्संग में आते हैं या भक्तों के संग में आते हैं या श्रीमद् भगवद्गीता या श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करते हैं तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए। हमारा मूड एक क्या बोलते हैं, बीमार व्यक्ति जो होता है एक मरीज की तरह होना चाहिए जो हॉस्पिटल में जाता है, और ना ही उस व्यक्ति की तरह जो टूरिस्ट होता है। ना बड़ा अंतर है एक टूरिस्ट जो होटल में जाता है और एक बीमार व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में जाता है। टूरिस्ट होटल में क्यों जाता है? वह इसलिए जाता है कि वहाँ जाकर मैं एंजॉयमेंट करूँगा, एंटरटेन करूँगा, कुछ पैसे दूंगा और भोग करूँगा। पर जो मरीज होता है वह हॉस्पिटल इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैं बीमार हूँ, और बहुत ही डेस्परेट कंडीशन में वह हॉस्पिटल में जाता है और ये समझता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शन मेरी सहायता कर सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए जो डॉक्टर्स है वो है भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुप्रीम डॉक्टर है, सुप्रीम सर्जन है। उनके भक्त भी हमारे लिए डॉक्टर की तरह है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो श्रीमद् भगवद्गीता है हमारे लिए, और दवाई जो है वो है महामंत्र जो हरि नाम जिसको कहते हैं हम। तो हम ये तीनों का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से यू नो हम भगवद्धाम जा सकेंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में ही सेवा करना और अंततः भगवद्धाम वापस जाना। और क्योंकि आज दो चार दिन कुछ नया है उनके लिए जस्ट मैं दो पाँच मिनट कहना चाहूँगा कि हम ये जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की कृपा से यू नो हम यहाँ पे बैठे हैं। नहीं तो बहुत साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस अरब देश के अंदर आके और हम शायद भगवद्गीता पर कुछ चर्चा करेंगे। तो ये जो फोटो सामने लगा है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, इन्होंने यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इस धरती पर जितने भी नगर और जितने भी ग्राम है सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो उस प्रचार करने के लिए शिला प्रभुपाद जो है वो एम्पावर्ड सर्वेंट है जिन्होंने प्रचार किया। और फिर शिला प्रभुपाद की जो शिष्य है अनुयायी हिजोलिनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, हिजोलिनेस जयपताका स्वामी महाराज, बीबी गोविंद स्वामी महाराज और अन्य और जो इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी है वो यहाँ पर आए और उन्होंने आके हरिनाम का प्रचार किया। और आज उनकी कृपा से ही हम यहाँ पर बैठकर इन्हें भगवद्गीता की कथा का श्रवण और कीर्तन कर पा रहे हैं। तो हम बहुत ही यू नो कृतज्ञ हैं उनकी कृपा के। यदि उनकी कृपा नहीं मिलती तो शायद हम ये सब नहीं कर पाते। तो आज हम श्रीमद् भगवद्गीता के पांचवें अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म में से पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप। हम लेंगे श्लोक क्रमांक 12। आज 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आप्नोति नैष्टिकीम् कामकारेण फल सक्तो निबध्यते। चलेगा इंग्लिश में पढ़ेंगे।
भक्ति में लगा हुआ
कर्म फलम निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने फल का अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं व्याप्ती। भागवत में किसी भी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना अद्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण भावना भावित में कोई द्वैत नहीं रहता और जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शांति तथा अभय का पद है। श्रील प्रभुपाद की
जय।
स्वयं श्रीमद् भगवद्गीता के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं आज। इसमें हम देखते हैं कि जो अध्याय है इसका नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसे कृष्ण भावना भावित कैसे किया जाए, या दूसरे शब्दों में हम किस तरह से कृष्ण भावना भावित कर्म कर सके, यू नो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट यू नो एक्ट विच इज एक्चुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट यू नो द मीनिंग ऑफ दिस। सो हम देखते हैं कि यू नो भगवद गीता की शुरुआत होती है यू नो प्रथम अध्याय से, जिसे अर्जुन विषाद योग या सैन्य निरीक्षण भी कहते हैं। और अर्जुन बड़े ही उत्साह के साथ भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ आप बीच में ले चलिए और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन वो लोग हैं जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान उनके रथ को ले जाते हैं और अर्जुन जो होता है वो सामने देख के एक्चुअली वो कहता है कि दृष्टम स्वजन, कि मैं अपने आप को मेरे सामने जो देख रहा हूँ वो मेरे स्वजन को देख रहा हूँ, यू नो मेरे यू नो पितामह है, मेरे गुरुजन है, मेरे भाई है, सब है, इनको मैं कैसे पलट के मारूंगा। और अर्जुन बहुत सारे कारण बताता है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और भगवान फिर अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। और भगवान सबसे पहला जो अध्याय बताते हैं वो ये कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। सबसे पहला जो समझने का जो जरूरत है वो यही है कि भगवद गीता का जो सबसे पहला शिक्षा है, सबसे पहली जो शिक्षा है भगवद गीता की, वो ये बताती है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, कहने के लिए बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल बात है, पर ये किसी को समझ में नहीं आता। जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि एक जन प्रभुपाद जी को बोल रहा था और वो कहने लगे कि प्रभुपाद जी आप लोग हमारे जो बच्चे हैं उनको आप ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वॉश करने के लिए पहले ब्रेन होना चाहिए। जिस व्यक्ति में ब्रेन ही नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, उसके पास ब्रेन कहाँ है। और अगर हम लोग कुछ वॉश भी कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली वॉशिंग द ब्रेन, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर गोबर भरा हुआ है। क्योंकि सबसे पहली चीज ही हमारे को समझ में नहीं आती है। हम लोग सुबह उठते हैं, उठते ही पहले कांच के सामने देखते हैं और तुरंत देखते हैं मैं कितना सुंदर हूँ, सीधा बाल को हाथ लगाते हैं। तो हमको पहली बात ये पता ही नहीं है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो भगवद गीता की शुरुआत वहां पे होती है। तो सबसे पहले जो समझने की आवश्यकता है वो यही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उसके बाद ग्रेजुअली अर्जुन को शिक्षा देते हैं भगवान और कर्मयोग के बारे में बताते हैं, फिर दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवद गीता अर्जुन मैं तेरे को पहली बार नहीं बता रहा हूँ, इसको बहुत वर्ष पहले मैंने सूर्यदेव को कहा था। तो अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछते हैं कि जहाँ तक मेरा ख्याल है सूर्यदेव तो आपके पहले से हैं और आप तो बाद में आए हैं, ये मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को ये भगवद गीता सुनाई थी। तो भगवान बताते हैं कि आपके और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं परमात्मा हूँ और तुम जीवात्मा हो तो तुम सब कुछ भूल चुके हो, जबकि मुझे सब कुछ याद है। और इस तरह से भगवान धीरे 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 अर्जुन को आगे लेके जाते हैं। और आज जो हम वर्ष ले रहे हैं वहाँ पर भगवान एक्चुअली एक उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जहाँ पर वह कहते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वह भी कर्म करता है और एक दूसरा व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन दोनों व्यक्ति के कर्म करने में फर्क है। भक्त जो कर्म करता है वो सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और इसके लिए उसे कुछ बंधन या उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सारे कर्म करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसको उसका रिएक्शन मिलता है। अब हम देख सकते हैं कि दो तरह के लोग हैं, सेम ऑफिस में दो व्यक्ति काम करते हैं, एक तरह का काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अपना जो वो किसके लिए काम कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए काम कर रहा है, और जबकि दूसरा व्यक्ति है वो अपने इंद्र भोग के लिए काम कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर यही है कि पहला कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और दूसरा अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहता है। तो कई बार क्या है कि हम जो कार्य करते हैं उसके फल की आशा रखते हैं, हालांकि भगवान ने पहले ही कहा है कि कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमें कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया है और कहा है कि आप कार्य करोगे तो उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा आप मुझे अर्पित कर दो, तो आप कार्य के बंधन में फंसोगे नहीं। पर जो व्यक्ति होता है, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं और फल की आशा रखते हैं, और उसी की फल की आशा की वजह से जब फल नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है कि नहीं मेरे को फल नहीं मिला। जैसे हम बहुत कुछ काम करते हैं फिर प्रमोशन की आशा रखते हैं या किसी और चीज़ की आशा रखते हैं, जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो बड़ा दुख होता है कि नहीं नहीं। सो कहने का क्या तात्पर्य, क्या यह कहने का तात्पर्य कि हम काम करके किसी चीज़ की आशा ही नहीं रखे, या हम ऑफिस के अंदर एक लाफिंग स्टोन बन जाए कि ठीक है भाई तुम क्या कर रहे हो। नहीं, भगवान कहते हैं कि नहीं, आप कर्म करो लेकिन फल की आशा। जय जय श्री राधा श्याम सुंदर की। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, शांति मापनोति। भगवान कहते हैं कि आप शांति को प्राप्त करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कई बार बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी कहते हैं कि यार मेरे को शांति चाहिए, अभी बहुत हो गया, पर ये शांति मिलती नहीं है। और भगवान कई सीरीज ऑफ वर्सेस में भगवद गीता में कहा है कि शांति किस तरह से मिल सकती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावत में आप जब काम करते हैं तो कोई द्वैतवाद नहीं होता, देयर इज नो ड्वालिटी, अदरवाइज इस दुनिया के अंदर हर चीज जो है उसमें ड्वालिटी रहती है, सुख दुख, धूप छाव, ठंडा गरम, हर चीज आती आती जो ड्वालिटी में रहती है। और उस ड्वालिटी को भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष सम्मुथेन द्वंद्व मोहेन भारत। बताते हैं कि ये जो सारा संसार है ये दो चीज से आगे बढ़ रहा है, इच्छा और द्वेष। हम लोग कोई चीज की इच्छा करते हैं, वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है, द्वेष आता है। जैसा एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे कि भय जो होता है वो किस तरह आता है किसी में. यू नो, अगर आप किसी चीज से भयभीत हो गए तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल हेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फियरिंग योर बॉस, हम हमारे बॉस को बहुत ज्यादा अगर डरते हैं तो इवेंचुअली वी विल हेट हिम. यू नो, एक बार एक व्यक्ति अपने बॉस के पास गया और बोला कि अभी मैं रेजिग्नेशन देता हूं, तुम मेरे को सर्टिफिकेट, उसको क्या बोलते हैं ब्रो जी, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दीजिए कि मैंने आपके साथ 5 साल काम किया है. तो उसने कहा, अरे 5 साल का, 6 महीने पहले तो तुमने ज्वाइन किया था, अभी रिजाइन करके जा रहे हो और 5 साल का सर्टिफिकेट कैसे दे दूं. तो बोला, तुम्हारे साथ 6 महीना काम करना 5 साल काम करने के बराबर था. यू नो, मैं इतने एंग्जाइटी में था कि कभी कुछ मैं सोच नहीं सकता था. तो फियर क्या होता है, भय वो होता है कि जो चीज हुई नहीं है और जो चीज होने वाली है या नहीं भी होने वाली है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. जैसे इंग्लिश में कहते हैं दैट फियर इज द फियर इज कंपेयर्ड विद ए डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप्ड. कि जब हम कुछ चीज से डरते हैं तो क्या होता है, बहुत अंधेरा अंधेरा छाने लगता है हमारे सामने, हमको लगता है कि नहीं चलो कुछ है. एंड फियर इज द इंटरेस्ट यू नो विच वी पे ऑन द लोन विच वी हैव नेवर बोरो. लाइक यू नो, बैंक में जो काम करते हैं उन्हें समझ में आएगा. तो नहीं, कहानी आती है कि एक बार ये बंदर लोग सोचते हैं कि चलो सब लोग, कल एकादशी एक्चुअली परसों, तो बताते हैं कि सब लोग एकादशी करते हैं, चलो हम भी एकादशी करते हैं. तो बंदर सोचते हैं चलो हम एकादशी करेंगे, सारे लोग जो मानव लोग हैं वो एकादशी करते हैं. तो लोग ठान लेते हैं और सब लोग मिलते हैं एक साथ और बोलते हैं कि आज एकादशी है. सब लोग बोलते हैं हाँ, तो बोलते आज हम एकादशी करेंगे. तो बोले बराबर है. तो इस तरह से बातें चलती है. तो एक बंदर बोलता है कि यार आज एकादशी है, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, आज से पहले हमने कभी एकादशी की नहीं है, एकादशी करने की आदत नहीं है, तो कल अगर खाने के लिए जब पेड़ पे चढ़ना होगा तो कैसे चढ़ेंगे, कुछ ताकत रहेगी नहीं हमारे पास. तो एक काम करते हैं, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं. तो सबने कहा हाँ बराबर है, क्योंकि जब एकादशी करेंगे ताकत ही नहीं रहेगी तो पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे. तो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं. तो दूसरा बंदर बोलता है कि यार पहली बार एकादशी कर रहे हैं, एकादशी करने के बाद यू नो हम इतने वीक हो जाएंगे कि हमारा हाथ भी नहीं बढ़ेगा फल तोड़ने के लिए और ताकत नहीं रहेगी कि फल तोड़ ले, तो आज फल तोड़ के रख लेते हैं. तो सब लोग बोलते हैं हाँ ये बराबर बात है, तो फल तोड़ के रख लेते हैं. तो तीसरा बंदर बोलता है कि यार एकादशी कर रहे हैं वो भी पहली बार, आज तक कभी की नहीं है, आदत नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है हमारे पास. सो इस हमारे पास इतना ताकत नहीं रहेगा कि दांत से फल को तोड़ सकें. तो एक काम करते हैं, तोड़ लेते फल को, फिर ठीक है. तो सब लोग बोलते हैं हाँ, और सब लोग फल तोड़ने लगते हैं. फिर दूसरा बोलता है कि फल तोड़ तो रहे हैं लेकिन चबाने के लिए ताकत रहेगी क्या. चबाने की ताकत नहीं रहेगी तो अभी आप काम करते हैं, चबा के रख देते फल, पड़ा रहेगा अंदर. नो, बंदर तो वैसे भी यहाँ पे रख देते हैं, पड़ा रहेगा. तो सब कुछ हो जाता था. एक बंदर बोलता है यार अब जो चबा के अंदर ही रख लिया है, बेटर खा लेते हैं. तो खा लेते हैं और वहीं क्या होता है, उनका एकादशी समाप्त हो जाता है. तो इस तरह से यू नो उनको डर रहता है कि नहीं ना एकादशी करूंगा तो कल क्या होगा, कल क्या होगा. उसी तरह कई लोग है जो ना भगवान के पास आने से डरते हैं. एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु वीटी स्टेशन पे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. तो गीता मैराथन के टाइम वो सबको, तो उनके उन्होंने एक आइडिया सोची कि यार इतने सारे लोग आते जाते वीटी पे से, कुछ लोग भगवद गीता खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं. मैं एक आइडिया करता हूँ, कम से कम उनको बोलता हूँ कि इसको हाथ लगा के जाओ. तो बोलेंगे हाथ लगाएंगे तो भी उसका पुण्य मिलता है. सब बताते हैं भगवद गीता अगर हमारे घर पे है, लेकिन कुछ लोगों का रॉन्ग कंसेप्शन है. जैसे कि ये जो फोटो है ये महाभारत के युद्ध का है. तो लोग बोलते हैं कि ये अपने घर पे महाभारत नहीं रखना चाहिए या भगवद गीता नहीं रखना चाहिए. तो क्यों, कि अपने घर पे महाभारत रखोगे तो बहुत झगड़ा होता है. ये कंसेप्शन है लोगों में. ऐसा कई लोग है, अब जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत साइलेंटली लेना चाहिए. ये लोग, तुम लोग क्या हरे कृष्णा वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हो, चिल्ला चिल्ला के नाम लेते हो. जब कीर्तन में बैठे रहते हो तो चुपचाप रहने का, ताली नहीं बजाने का. तो उन्होंने कहा कि आप खाली थोड़ा तंबाकू रखो तो जोर जोर से ताली बजाना शुरू करेंगे उस टाइम पे, लेकिन वैसे ताली नहीं बजाएंगे. तो कई सारे कंसेप्शन है. तो उन्होंने कहा कि चलो हाथ लगाओ कम से कम. तो एक व्यक्ति आया, उनको उन्होंने हाथ के लिए बोला नहीं, बोले दूर दूर रहो दूर रहो. बोला क्या हो गया भाई, कम से कम भगवद गीता नहीं ले रहा है, हाथ तो लगा के जा. तो बोला नहीं, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बहुत डेंजर है. बोला क्यों, तो बोलता इसको हाथ लगाऊंगा तो मैं तुम्हारे ऐसा बन जाऊंगा और मुझे तुम्हारे ऐसा नहीं बनना है. तो कई लोग डरते हैं कि कृष्ण भावना भावित में आ गए तो ऐसा डर लगता है कि नहीं क्या होगा, अगर मैं भगवान का आश्रय ले लूंगा तो क्या होगा. यू नो यही चिंता हमें हमेशा सताते रहती है. तो बताते हैं कि फियर जो है, यू नो काफी हम डरते हैं और डरने की वजह से क्या होता है कि हम कुछ इच्छा करते हैं और हमारे को वो चीज मिलती नहीं है, तो देर इज अ गैप, यू नो। तो इच्छा द्वेष में ही हम चलते रहते हैं और ये इच्छा द्वेष भय और इन सब की वजह से क्या होता है कि शांति प्राप्त नहीं होती। पर जो शांति का फॉर्मूला है, जिसे प्रभुपाद पीस फॉर्मूला कहते हैं कई बार, वो श्रीमद भगवद गीता में दिया गया है। और भगवद गीता के अंदर भगवान इसी पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसान सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यू नो, कई लोग है जो शांति के बारे में बात करते हैं और कई बार जोर जोर से चिल्लाते हैं शांति 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 और ओम शांति ओम शांति ओम शांति, लेकिन वो शांति मिलती नहीं है। तो बताते हैं कि शांति मिलेगी कैसे, जब शांति का सच्चा मार्ग ही पता नहीं है तो शांति मिलेगी कैसे है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक्चुअली भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं यू नो सभी यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर हूं और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी हूं। ऐसा जो व्यक्ति जानता है वही भौतिक दुखों से दूर होकर शांति को प्राप्त कर सकता है। अभी जैसे हम सभी अपने आप को भोक्ता समझते हैं, जब भगवान कहते हैं भोक्ता राम तो लोग समझते हैं कि अरे भगवान भोक्ता है तो हम भी भोक्ता है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया और बोला कि ये कृष्णा ने 16108 रानी के साथ रहते थे, हाँ ये क्या है, ये कोई मोरालिटी है, हाँ आप ऐसे भगवान की पूजा करते हो जिसके पास 16000 रानियां थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक जो तुम्हारे पास जो औरत है वो भी तुम्हारी चोरी है ना, वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी भगवान की है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जितने भी सारे लोग हैं वो सब क्या है, मेरा अंश है ना। भगवान हम जो है वो अणु है और भगवान विभु है, सब कुछ भगवान से ही आता है। और भगवान का जो डेफिनेशन दिया है जो श्रीमद् भागवतम और वेदांत सूत्र के पहले श्लोक में है कि जन्माद यस्य यतः, केवल एक व्यक्ति है जिससे सभी चीज का उद्गम होता है ना, कोई ना कोई चीज से। ये कोई बिग बैंग थ्योरी की तरह नहीं है कि एक यू नो झटका हुआ और ये संसार पैदा हो गया। एक बार एक न्यूटन उसका मित्र था, वो उसके लाइब्रेरी में गया और उसने बहुत अच्छा सोलार सिस्टम बनाया था। तो देखा कि मेज के ऊपर टेबल के ऊपर बहुत अच्छा सोलार सिस्टम पड़ा हुआ है, तो वो दोस्त देख के आश्चर्यचकित रह गया, बोला अरे ये इतना अच्छा सोलार सिस्टम कैसे बनाया तुमने। तो उसने कहा कैसे बनाया, ये ऑटोमेटिक आ गया। तो उसने कहा ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है, तो कहा नहीं मैं अपनी लेबोरेटरी बंद करके कल गया था, आज सुबह आके खोल के देखा तो टेबल के ऊपर इतना मस्त सोलार सिस्टम है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मूर्ख मत बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना कुछ किए सोलार सिस्टम कैसे आ सकता। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये चीज की यू नो पुष्टि नहीं कर सकते कि सोलार सिस्टम अपने आप नहीं आ सकता, तो आप सोचते हो कि ये जो पूरा संसार है वो ऐसे ही आ गया, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। यू नो बताते कि जनरेशन यू नो इम्प्लाइज ए जनरेटर, कि अगर कोई चीज की सृष्टि हुई है तो उसका सृष्टिकर्ता भी होता है। यू नो कंप्यूटर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, लेकिन स्विच दबाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, वो प्रोग्राम लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह जो संसार है ना उसके पीछे किसी का हाथ है। तो वो व्यक्ति जो है ना उन्होंने ये भगवद गीता समझाई है, तो वो कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और जितने भी सारे यज्ञ हम करते हैं उसका केवल एक ही ना कारण है कि उनको प्रसन्न करने के लिए, समसिद्धि हरितोषणम। वेदांत कहते हैं कि जो यज्ञ करने का एकमात्र कारण है कि उनको संतुष्टि देना है। और भगवान कहते हैं कि मैं महेश्वर हूँ, मतलब महा ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। क्यों ना हम छोटे छोटे ईश्वर हैं, हम हमारे घर के ईश्वर है, कोई कार का ईश्वर है, कोई किधर का ईश्वर है, पर भगवान जो है वो महेश्वर है। और वो बताते हैं कि सुहृदम, सुहृदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बताते हैं कि तीन तरह के यू नो आपके दोस्त या आपके साथ डीलिंग करने वाले रहते हैं, एक को कहते हैं मित्र, एक को कहते हैं बंधु और एक को कहते हैं सुहृदम। तो मित्र मतलब होता है कि ठीक है मेरा दोस्त है चलो, और बंधु जो होता है वो क्लोज फ्रेंड होता है। बट सुहृद जो होता है जो हार्ट टू हार्ट फ्रेंड, हृदय मतलब हृदय हृदय, और सुहृदय मतलब जो एकदम हमारे दिल के पास रहता है, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। तो भगवान जो है वो हमारे हार्ट जैसे यू नो मित्र है। और कहते हैं कि सर्वभूतानाम, भगवान जो है वो सुहृद है किसके, एक जन के या दो जन के नहीं, सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम मतलब सारे व्यक्तियों के, तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं और यू नो हर चीज आते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि जानवर को काट के मार के खा रहे हैं, तो भगवान को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के 3-4 बेटे हैं और एक उसमें से नालायक है या उसमें समझ नहीं है या पागल है, और 3 जन मिलके बोलेंगे कि इसको मैं मार के खाता हूँ या इसको मार देता हूँ, तो पिता को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे भगवान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये चल रही है। और भगवान कहते हैं कि जो ये चीज समझता है कि मैं ही सबका भोगता हूँ, मैं सभी का स्वामी हूँ, सभी यज्ञ मेरे लिए किए जाने चाहिए और मैं सबका सुहृदम मित्र हूँ, ऐसा व्यक्ति केवल शांति को प्राप्त कर सकता है। और दूसरे श्लोक में भगवान एक जगह कहते हैं दूसरे अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धि रक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चया भवत्य शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। और बताते हैं कि हम जो लोग हैं सभी लोग सुख पाना चाहते हैं, पर भगवान कहते हैं कि जो परमेश्वर से जो संबंधित नहीं है ना, जो भौतिकवादी है, उसकी ना तो दिव्य बुद्धि होती है और ना मन स्थिर होता है ना। जिस आदमी की बुद्धि स्थिर नहीं है उसका मन भी स्थिर नहीं रह सकता, और यदि मन स्थिर नहीं रहेगा तो उसको शांति नहीं मिल सकती है, और अगर शांति नहीं है तो भगवान कहते हैं कि सुख कहाँ से मिलेगा ना। सबसे पहले तो ऐसा है कि अल्टीमेटली जो सबका पर्पज है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी लोग आनंद की खोज में हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सच्चा आनंद क्या है ना, इसलिए आनंद पाने के लिए गलत दिशा में भाग रहे हैं। तो बताते हैं कि उनको वापस पीछे आना पड़ेगा। तो पहले भगवान यहाँ पे शांति का फॉर्मूला बताते हैं और बताते हैं कि शांति किस तरह से मिल सकती है, और यदि आप शांति को प्राप्त करोगे तो ही आप सुखी रह सकते हो, नहीं तो हम सुखी नहीं रह सकते। तो बताते हैं कि सुख पाने का जो यू नो जो मार्ग है वो यही है कि हम भगवान कृष्ण को समझे, श्रीमद् भगवद गीता को समझे, और उसकी जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में यू नो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तो ही हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत ही लंबा प्रपट दिया है 5.29 पे, जिसमें हम यू नो बहुत अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जैसा हम यू नो जयकेश्वर प्रभु से चर्चा कर रहे थे कि आज हम एक्चुअली कुछ अलग टॉपिक पे चर्चा करने का यू नो हमने विषय चुना है, तो अभी बहुत ज़्यादा समय भी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसीलिए केवल जयकेश्वर प्रभु ने कहा था कि थोड़ा सा श्लोक पे बोल के और फिर हम इस फेस्टिवल पे बात करेंगे। सो अभी जो है जैसा कल भी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यू नो फेस्टिवल है, डिसअपीरेंस ऑफ श्रीवास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर पंच तत्व में जो श्रीवास है उनका तिरुभाव दिवस है, और अभी नेक्स्ट वीक से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा शुरू होने वाली है जगन्नाथपुरी में। सो वही हम बात कर रहे थे कि कुछ हम रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे। भगवान की असीम कृपा से हमने पहली बार अबू धाबी में लास्ट टू लास्ट फ्राइडे रथ यात्रा की थी, शायद आप लोगों ने अटेंड किया रहेगा। तो ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और अभी जो है वो पिछले एक हफ्ते से स्नान यात्रा चल रही है, तो हम थोड़ा स्नान यात्रा के बारे में और मुंडीचा मार्जनम के बारे में थोड़ा आप चर्चा करेंगे। तो बताते कि हमारे 4 धाम है ना, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रिका और जगन्नाथपुरी। सो ये जो हमारे 4 धाम माने जाते हैं, तो उसमें बताते हैं कलयुग के लिए जो स्पेसिफिक धाम यू नो बताया गया है वो है जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ है, और जगन्नाथपुरी में यदि आप देखेंगे तो लोग जो है बहुत ही सिंपल है अभी भी, हालांकि यू नो मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है और यू नो सब चीज़ चेंज होते जाती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जो है वो लोगों के प्राण धन है। और दयामृत प्रभु बोल रहे थे कि लेकिन आजकल हमारा प्राण धन कौन है, टेलीविजन है ना। आप जाओगे, जैसे हम जगन्नाथपुरी जब गए थे तो हमने देखा कि हर व्यक्ति के घर के ऊपर ना भगवान का एक फोटो बना हुआ है, और उनके घर में भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां हैं और भगवान की वो लोग पूजा करते हैं, और ऊपर एक झंडा लगाते हैं कि ना वो फ्लैग होता है कहने के लिए कि हमारा घर एक मंदिर है ना। लोग बाहर बना देते हैं घर एक मंदिर है, लेकिन अंदर मंदिर नहीं होता है। तो राधा गोपीनाथ रूप बता रहे थे कि अभी भी है यू नो कि सेंटर का जो कमरा होता है एकदम जो इम्पोर्टेंट हॉल के अंदर बीचों बीच हम हमारे प्राण धन को स्थापित करते हैं, और ऊपर एक झंडा लगाते हैं, वो क्या है, एंटीना, टेलीविजन। सो टेलीविजन ने वो स्थान ले लिया है हमारा, जो कि बहुत यू नो अच्छी बात नहीं है। और दयामृत प्रभु कहते हैं कि पहले के जमाने में टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, जो माया थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर अभी जो है वो कलरफुल माया है, यू नो। तो बहुत ही तरह के, और अभी तो हजारों चैनल आते हैं, जहाँ पे जब मन आता है वो देख लो। पर हमारा जो मूवमेंट है वो श्री चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला के जो 48 वर्ष थे उसमें से 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में थे, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था, और उस 24 में से 18 वर्ष वो जगन्नाथपुरी में रहे थे। तो बताते हैं गौड़ीय वैष्णवों के लिए जगन्नाथपुरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट धाम है, चार धाम में से एक तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये श्रीमान महाप्रभु की लीला स्थली है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही ज़्यादा लीलाएं की थी। सो अभी जैसे पिछले हफ्ते स्नान यात्रा शुरू हुई है। स्नान यात्रा क्या होता है कि जो भगवान जगन्नाथ, अभी भी एक्चुअली जगन्नाथपुरी में ये रूल है कि वहाँ पे केवल हिंदुओं को ना अंदर जाने के लिए अलाउड है, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं करते। ऐसे कई मंदिर है, आई थिंक गुरुवायर में भी और बहुत सारे मंदिर, जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी ये जो चला आ रहा है ट्रेडिशन। पहली बात तो ये है कि हिंदू कोई होता ही नहीं है, यू नो। सनातन जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर हिंदू शब्द कहीं पे नहीं है, यू नो। मगर जो सिंधु रिवर के पास जो उस तरफ लोग रहते थे, इस तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने सिंधु सिंधु कहना शुरू किया, और सिंधु गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदू। सो अदरवाइज कोई हिंदू है ही नहीं। और हालांकि हमको ये जब हम जब समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा का तो कोई यू नो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना अमेरिकन होता है। तो हालांकि सभी को अलाउ करना चाहिए, पर नहीं करते फॉर सर्टन रीजन। सो जगन्नाथ जी इतने यू नो कृपावान है, इतने मर्सीफुल है कि वो भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद बाहर आते हैं मंदिर से, और मंदिर से बाहर आकर रथ यात्रा के दौरान वो सभी को अपना दर्शन देते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है ये इस्कॉन में भी शिला प्रभुपाद जी ने शुरू की, और सबसे पहले यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकली थी। सो सैन फ्रांसिस्को में आज पब्लिक डिक्लेयर्ड अमेरिका के अंदर हॉलीडे होता है, यू नो छुट्टी का दिन होता है, जहाँ पर लाखों लोग ये अटेंड करते हैं, और बड़े ही बड़े पैमाने पर प्रभुपाद जी ने इस यू नो जगन्नाथ रथ यात्रा को लिया, क्योंकि वे जानते थे कि जगन्नाथ जी बहुत ही मर्सीफुल है, और जगन्नाथ जी की कृपा से कई लोग भक्त बनेंगे। सो स्नान यात्रा 15 दिन पहले रथ यात्रा के क्या होता है कि जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, और बहुत ही हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे घड़ों से यू नो लाला के भगवान का अभिषेक करते हैं और उनको नहलाते हैं, और इतना नहलाने की वजह से क्या हो जाता है कि भगवान को सर्दी लग जाती है। तो उस सर्दी की वजह से भगवान सेक्लूजन में चले जाते हैं, और उन्हें कई अलग अलग तरह का काढ़ा वगैरह बना के पिलाया जाता है, और जो दायित्व जो उनके सर्वेंट होते हैं वो उनकी वहाँ पर सेवा करते हैं। और आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी है, बलभद्र जी मतलब बलराम जी है, और सुभद्रा मैया है, और सुदर्शन जी है, वहाँ पर ये भगवान की फैमिली है। सो ये जो 15 दिन का पीरियड होता है इसमें भगवान को लक्ष्मी देवी के साथ रखा जाता है, और लक्ष्मी देवी क्योंकि उनकी पत्नी है वो भगवान की सेवा करती है उस पीरियड में, और उस पीरियड में किसी को भगवान का दर्शन नहीं मिलता। तो कई लोग होते हैं जो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी खुद अलारना जाया करते थे उस दरम्यान में। सो इस टाइम पे भगवान धीरे धीरे जब उनकी सर्दी ठीक होती है तो भगवान को वापस यू नो पेंट किया जाता है, नव कलेवरम उसको बोलते हैं, और उसके बाद भगवान की पूजा करके जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो उसको भगवान को रथ पे चढ़ाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यू नो अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें एकदम बहुत ही विविध डिस्क्रिप्शन है रथ यात्रा का, कि रथ यात्रा क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे हमने रथ यात्रा के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, और हमने बताया था कि भगवान श्री जगन्नाथ का आविर्भाव कैसे होता है, तो हम उस पार्ट में भी नहीं जाएंगे। बट संक्षेप में जो पहली बार आए हैं या जो लास्ट टाइम नहीं थे उनके लिए, कि भगवान द्वारका में जब सोते थे कई बार तो सोते सोते नींद में से उठ जाते थे और चिल्लाते थे राधे राधे गोपी गोपी। तो इस तरह उनकी 16,000 रानियों को लगा कि ये क्या है, इतने साल हो गए भगवान जब 9 वर्ष के थे तब वृंदावन छोड़ा था, अभी 100 वर्ष के फिर भी ये यू नो भूल नहीं पा रहे गोपीज को और इन सबको वृंदावन को, तो इसका क्या राज है। तो बताते हैं कि द्वारका में केवल भगवान कृष्ण थे, बलराम जी थे, और बलराम जी की जो मदर रोहिणी माता वही तीन जो थी जो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में उन्होंने देखा था, पार्टिसिपेट किया था, बाकी किसी को पता नहीं था। तो बलराम जी जो थे वो उनके जेठ के समान थे रानियों के, तो रानियां उनसे तो कुछ पूछ नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा रोहिणी माता से पूछते हैं। तो रोहिणी माता ने कहा कि नहीं, मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि जहां पे मैं वृंदावन के बारे में कहना शुरू किया कृष्ण वहां पे आ जाएंगे, और अगर उन्होंने सुन लिया तो तुरंत वृंदावन चले जाएंगे, तुमको छोड़ देंगे, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं बताओ। तो कई वर्षों तक उनसे प्रयास करते रहे वो। फिर उन्होंने कहा कि चलो अंत में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कृष्ण को कैसे रोका जाए। तो छोटी बहन जो होती है ना, कई बार वो भाई पे हक जमाती है। तो सुभद्रा ने कहा कि नहीं, मैं कृष्ण को रोकूंगी, मैं दरवाजे पे खड़े रहूंगी, आप अंदर कथा सुनाओ। तो जैसे ही माता रोहिणी कथा सुनाना शुरू करती है, कृष्ण बलराम तुरंत वहां आ जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान आप कहाँ पे रहते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता और मैं मंदिर में भी नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं वहां पर भगवान आ जाते हैं। तो तुरंत कृष्ण बलराम वहां पे आ गए जब वृंदावन की चर्चा होने लगी। सो जैसे ही कृष्ण बलराम आए, देखा दरवाजे पे सुभद्रा है, तो सुभद्रा उनको अंदर नहीं जाने दे रही है, लेकिन वो कथा सुनने लगे। और कथा सुनने की वजह से, क्योंकि इतने साल से विरह के भाव में थे, भगवान कृष्ण की जो आंखें थी वो एकदम बड़ी 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 होने लगी, और उनका मुंह एकदम बड़ा हो गया, फूल गया आश्चर्यचकित होने से, और उनके जो शरीर था वो गलने लगा, और गल के उनका शरीर अंदर चला गया। और यही प्रतिक्रिया बलराम जी और सुभद्रा मैया के साथ भी हुई कि उनका मुंह बहुत बड़ा हो गया और शरीर गलने लगा। इमीजिएटली उस टाइम पे नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि जब आए तो उन्होंने देखा भगवान को इस रूप में, तो असंभवित रह गए, कह रहे ये क्या है। और इमीजिएटली भगवान वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, पर नारद मुनि चिल्लाने लगे कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, भगवान आपका रूप मैंने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आपका ये रूप इतना अच्छा है, पर आप लोगों को क्यों वंचित कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नारद, जब मैं कलयुग में आऊंगा जगन्नाथ के रूप में, तब मेरा ये रूप होगा और सभी लोग इस रूप को देख सकेंगे। तो इन शॉर्ट यू नो, ये जगन्नाथ जी की स्टोरी है कि जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है वो वहां से आता है। और इसके अलावा एक और जो दूसरी स्टोरी है कि भगवान की जो मूर्ति कैसे बनी, वो राजा इंद्रद्युम्न की, वो भी हमने डिटेल में बताई थी कि जो नील माधव थे उन्होंने आदेश दिया था, और अल्टीमेटली राजा इंद्रद्युम्न ने ये मूर्तियों की स्थापना की थी। तो जब विश्वकर्मा आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मूर्ति की कार्विंग करूंगा, लेकिन 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो अंदर 100 वर्ष के बूढ़े के रूप में आए थे, वो अंदर मूर्ति बना रहे थे। और राजा की जो पत्नी थी गुंडीचा उनका नाम था, वो बहुत ही व्याकुल थी भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब 14 दिन के बाद वो छिन्नी हथौड़े का कुछ भी आवाज़ नहीं आने लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी दरवाज़ा खोल के देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो विश्वकर्मा ने कहा कि बस, मैंने आपको कहा था कि आप दरवाज़ा मत खोलना, आपने अब दरवाज़ा खोल दिया, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि भगवान का जो रूप है उसमें केवल भगवान का शरीर में से मुंह बना हुआ है और बाकी कुछ चीज़ नहीं है। तो राजा बड़े दुखी हो गए और रोने लगे। तो भगवान उनको आके कहने लगे कि नहीं, ये मेरा रूप है, इसी रूप में मैं पूजित आऊँगा, तो आप मेरे थोड़े हाथ बना के और मेरी पूजा कीजिए। तो एनीवे, इन शॉर्ट भगवान जगन्नाथ के बारे में ये। लेकिन जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा जो महोत्सव है, बेसिकली वो जगन्नाथ जी का जो मेन टेम्पल है, उस टेम्पल से गुंडीचा मंदिर तक भगवान को जो ले जाने की जो प्रथा है वह रथ यात्रा है। सो गुंडीचा मंदिर जो है वो राजा की जो रानी थी, रानी गुंडीचा, उनके नाम पे दिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा बताते कि जो सुंदराचल है, जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वो द्वारका को रिप्रेजेंट करता है, और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है। तो द्वारका से वृंदावन को भगवान को ले जाने की जो ये प्रक्रिया है, ये उत्सव है, वो रथ यात्रा है। सो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हमको एक बहुत ही बड़ा उपदेश देना चाहते थे, बहुत ही बड़ी शिक्षा देना चाहते थे कि यदि भगवान को आप बुलाते हो मंदिर में, तो वो जगह बहुत ही साफ होनी चाहिए, बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। ऐसा बताते हैं कि रथ यात्रा एक्चुअली जो गोपी थी, जब उन्होंने भगवान को कुरुक्षेत्र में देखा था एक द्वारकाधीश के रूप में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भगवान को यू नो वृंदावन चंद्र जो है उसके रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने हृदय में रथ बनाया और भगवान को उस रथ में खींच रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं कि जो रथ यात्रा महोत्सव है, वो है कि हमको भगवान श्री कृष्ण को यू नो हमारे हृदय में ले आना है, हमारे हृदय में बिठाना है। तो ये प्रक्रिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर भगवान को बुलाना है तो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी जगह में हम हमारे सुप्रीम गेस्ट को नहीं बिठा सकते। तो ये जो गुंडीचा मार्जन की जो कथा है वो ये है कि जो गुंडीचा मंदिर है उसमें केवल भगवान कुछ दिन के लिए रहते हैं, 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन, और उसके बाद यू नो पूरे टाइम पे भगवान सुंदराचल मंदिर में रहते हैं मेन टेम्पल के अंदर, और बाकी टाइम ये गुंडीचा मंदिर बंद होता है। तो उस बंद होने की वजह से जो हमारा ओपन आर्किटेक्ट और ये सब बनाया है, उसकी वजह से उसमें बहुत धूल मिट्टी आदि सब जमा हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि नहीं, हमको इस मंदिर को पहले क्लीन करना है अगर भगवान उसमें आते हैं तो। सो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो अपनी लीला कर रहे थे, तो इस साथ कई लीला करते करते उनका टाइम बीत गया। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही अच्छी ना कथा बताते हैं, और वे कहते हैं कि एई मत नाना रंगे दीन को तगेला जगन्नाथ रथ यात्रा निकट आईला। वो कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे, और लीला करते करते जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का टाइम आ गया। सो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्रा को बुलाया जिनके घर में वो रहते थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, और जो जगन्नाथ मंदिर का जो सुपरिटेंडेंट था उनको बुलाया, और उनको आके कहा कि मेरे को ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना है, इसे साफ करना है। तो बताते हैं कि तीन जन, मतलब ये तीनों जनों को लेकर चैतन्य महाप्रभु गए और उनको प्रार्थना की। तीन जन पासे प्रभु हसिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। उन्होंने ये सेवा मांगी भगवान स्वयं कि ये गुंडीचा मंदिर जो है इसका मार्जन करना है, इसको साफ करना है, कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इसको साफ कर सकूं। तो सुपरिटेंडेंट जो था उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ, यू नो आप तो स्वयं भगवान है, आप पर कोई चीज लागू नहीं होती है, और आप कैसे हमसे ये सेवा मांग रहे हैं, आपकी जो मर्जी है आप वो कर सकते हैं। और राजा प्रताप रुद्र ने मुझे आज्ञा दी है कि चैतन्य महाप्रभु जो भी इच्छा करेंगे इमिजिएटली तुरंत ही उस इच्छा की पूर्ति की जाए। तो कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, और आप, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मंदिर में जाके मंदिर को धोएं साफ करें, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं समझूंगा कि आपकी ये लीला है और मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भगवान यदि आप साफ करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे झाड़ू और बहुत सारे घड़े चाहिएंगे साफ करने के लिए। तो इमिजिएटली उन्होंने क्या किया, 100 झाड़ू और 100 घड़े भगवान को दे दिए, चैतन्य महाप्रभु को। और बताते कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये जो कई बार अभी जैसे हम भी स्वयं सूरति प्रभु के घर पे आते हैं और ये सेवा करते हैं जन्माष्टमी के और गौर पूर्णिमा के पहले साफ सफाई करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सेवा ये ऑर्डिनरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम चैतन्य महाप्रभु इसमें बताएंगे कि खुद कैसे उन्होंने पर्सनली गुंडीचा मर्दन का मार्जन किया, पर हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हम लोग सीनियर डिवोटी हो गए हैं, मैं खाली आदेश दूंगा और दूसरे छोटे छोटे लोग काम करेंगे, मैं काम नहीं करना चाहता, मैं खाली मैनेज करूंगा। पर हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं खुद गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते थे कि भगवान के लिए भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो झाड़ू मारने का भी कर्म क्यों ना हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आर दिन प्रभाते, मतलब कल सुबह दूसरे दिन सुबह, आर दिन प्रभाते लन जीव गान श्री हस्ते सवारे अंगे लेपीला चंदन। चैतन्य महाप्रभु उनके सारे गण को लेकर साथ में गए, उन्होंने क्या किया अपने स्वयं श्री हस्त से उनको चंदन लगाया और कहने लगे कि आप बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेवा करने वाले हो, ये सेवा ऑर्डिनरी नहीं है ना, हमारे जो हृदय का जो मार्जन करना पड़ता है, जो पूरा जो प्रोसेस है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है। और गए, और बाद में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से एक एक झाड़ू और एक एक घड़ा सभी को दिया। श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी सब गण लेना प्रभु चलीला अपनी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक एक मार्जनी, सबको एक एक झाड़ू दिया, और चैतन्य महाप्रभु बड़े ही उत्साह से चल दिया मंदिर को साफ करने के लिए। तो हम देखेंगे कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर को किस तरह से साफ करते हैं और उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। बताते हैं कि सबसे पहले वो गए और जाके एकदम अंदर का जो पार्ट है गर्भगृह, उसको उन्होंने साफ करना चालू किया, और बहुत ही सुंदरता से कुशलता से भगवान और भगवान के सब गण वो जाके भगवान का सिंहासन को साफ किया। और उसके बाद जो भी बड़े छोटे हॉल थे उन सब हॉल को, सीलिंग को सबको, और जो कीर्तन का जो हॉल था, प्रसादम हॉल था, सबको उन्होंने क्लीन करना शुरू किया। और बाद में टेम्पल को जब वो क्लीन कर रहे थे तो बताते हैं कि बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जुबिलेशन में वो क्लीन कर रहे थे। और ये सब क्लीनिंग करने की वजह से क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर था उसके ऊपर बहुत ही धूल मिट्टी और वो सब जमा हो गया। तो बताते हैं कि वो धूल मिट्टी और पसीना सब चैतन्य महाप्रभु की शोभा बढ़ा रहा था। ऐसा बताते हैं कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उस युद्ध के टाइम पे बहुत सारी धूल मिट्टी और ये सब वगैरह उड़ रहे थे, तो वो मिट्टी उड़ के श्री कृष्ण के बाल में और मुंह पे सब आ गई थी। और जब वो चक्र लेके भीष्म देव पर जब मारने के लिए गए थे तो भीष्म देव उनका वही रूप निरख रहे थे, देख रहे थे कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसा कि हमारे ऊपर अगर कचरा जमा हो जाता है हम मेकअप करने लगते हैं, साफ करते हैं, पर भगवान के ऊपर यदि कचरा भी जमता है तो उसकी शोभा बढ़ाता है। और उसके बाद में भगवान ने क्या किया कि भोग मंदिर जो था भगवान जगन्नाथ जी का वो किया, और बाकी जो भी मतलब जो तिनके और वो सब सब थे वो सब जमा करके क्या किया उन्होंने बाहर फेंके सबको। और चैतन्य महाप्रभु को इस तरह का देखता हुआ करता हुआ देख के बाकी जो लोग थे वो भी बड़े उत्साह में आ गए। जैसे हम देखते हैं कि कई बार समझो अगर महाराज खुद कुछ काम कर रहे हैं तो सब लोग दौड़ते हैं खुद करने के लिए कि चलो हम भी करते हैं इस तरह से। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितना काम किया, चलो बताओ मेरे को, अपना रिपोर्ट दो। तो उन्होंने सबने क्या किया कि जितना भी कचरा निकाला था सब कचरा जमा किया और एक उसका पहाड़ बनाया। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने सब कचरा जो जमा किया था खुद अकेले ने उनका एक पहाड़ बनाया। तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो पहाड़ था कचरे का वो उनके सब लोगों के पहाड़ से बड़ा था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से मतलब कर रहे थे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो इस तरह साफ कर रहे थे जैसे उनके हजार हाथ हो, इतने उत्साह से काम कर रहे थे। और जब उन्होंने पूरा मंदिर साफ कर लिया और साफ करने के बाद फिर वापस से उनको बोले कि हम एक बार वापस से साफ करेंगे ये मंदिर न, तो दोबारा गए वो साफ करने के लिए और बताते कि इस बार जो भी एकदम कहीं पे छुपा हुआ जो कचरा था फाइनल डस्ट फाइनल पार्टिकल्स वो सब उन्होंने किया। और वो करने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब हम मंदिर को धोएंगे। तो वहां पर जो थे वो 100 डिवोटी रेडी थे घड़ा लेके अपना कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि धोना है चलो शुरू हो जाएंगे, तो भर के सब आए थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया कि चलो अभी धो, सो सबने घड़ा ला ला के और पूरा का पूरा मंदिर साफ करना शुरू किया। और बताते हैं कि वो घड़े से पानी इस तरह से डाल रहे थे कि मानो ना बहुत बड़ा टॉरेंट्स ऑफ रेन वहां पे गिर रहा हो, और ना ही फ्लोर वो सीलिंग भी साफ कर रहे थे। जैसे कई बार बताते हैं कि हम लोग जब करते हैं तो केवल उन्हें जितना जरूरत है उतना ही साफ करके छोड़ देते हैं, पर उन्होंने बहुत ही डिटेल के अंदर उन्होंने किया, सीलिंग पे पानी डाला। और भगवान जगन्नाथ जी को जो बैठने का जो स्थान था चैतन्य महाप्रभु खुद वहां गए, उन्होंने पानी से साफ किया, फिर अपना कपड़ा लेके खुद के उसको पोंछ के साफ करने लगे। तो भगवान को देखते हुए दूसरे व्यक्ति दूसरे जो डिवोटी थे उन्होंने भी खुद ने क्या कि अपना धोती वोती लेके और साफ करने लग गए। और सब लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के हाथ में जाके घड़ा दे रहे थे पानी डाल रहे थे, कुछ लोग आके चैतन्य महाप्रभु के पैरों पर पानी डाल रहे थे, और कोई आके उनका पानी पी लिया। और इस तरह से बहुत बड़ी खुशी से गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था। और बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस तरह से जब उन्होंने मार्जन किया तो मंदिर जो था वो ऐसा लग रहा था कि एकदम पूरी तरह से चकाचक साफ हो गया है और भगवान के मन की तरह वो है। ऐसा बताते हैं कि हमारा जो मन है उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, लेकिन भगवान का जो मन है वो बहुत शीतल है, बहुत ही क्लीन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस तरह का मतलब वो मंदिर लग रहा था कि भगवान का मन हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मोर मन वृंदावन, भगवान का जो मन है वो वृंदावन है, तो वृंदावन के लिए। तो बाद में भगवान ने खुद अपने कपड़े से ले लेके और साफ करने लगे, और ऐसा वर्णन आता है कि इतना सारा वो पानी डाल रहे थे कि जो नदी थी वहां पे वो नदी और जो सरोवर था उसमें एक्चुअली खड़ा रहने के लिए जगह नहीं थी। इतने सारे डिवोटी चले गए पानी लेने के लिए कि खाली डिवोटीज ही दिखाई दे रहे थे, पानी का दिखाई नहीं दे रहा था। तो कई लोग फिर जाके और कुएं में से पानी लाने लगे इतना उत्साह के साथ, और कुएं से और इतना सारा उन्होंने पानी डाला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि एक नदी का प्रवाह जा रहा है, एक नदी बह रही है और वो जाके समुन्द्र में मिलना चाहती है। और इस तरह से वो लोग घड़ा ला रहे थे, पानी ला रहे थे, लेके जा रहे थे घड़ा। हम लोग जब 99 में और 2001 में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ जगन्नाथपुरी गए थे तो हमने भी गुंडीचा मार्जन में थोड़ा तुच्छ सहायता करने की कोशिश की थी। तो हम लोग इतना उत्साह के साथ कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि दूसरे व्यक्ति को देखकर थोड़ा उत्साह आ रहा था, और बड़े ही उत्साह के साथ कर रहे थे, तो भाग रहे थे इधर से उधर। कई बार समझ में नहीं आ रहा था, और कई बार क्या हो रहा था कि एक डिवोटी साफ कर रहा था दूसरा लाके पानी डालता था तो उधर वापस कचरा आ जाता था तो इस तरह से बुद्धि नहीं थी तो इस तरह से साफ कर रहे थे, पर एनीवे सब लोग क्लीनिंग करने के लिए अंदर लगे हुए थे। और इस तरह से जब डिवोटी भाग रहे थे तो क्या हो रहा था कि एक दूसरे से टकरा रहे थे और घड़ा टकराने की वजह से घड़ा टूट रहा था। बड़ा ही विचित्र वर्णन है, बहुत मस्त तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। और बताते हैं कि जब वो ये सब काम कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे कि हरि बोल कृष्णा कृष्णा करके हरि ध्वनि सुनाई देती थी। तो उन्होंने कहा था कि जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी, कि वहां पे दूसरा कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा था, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, कोई नहीं बोल रहा अरे क्या किस तरह से साफ कर रहे हो, तुमको साफ करना नहीं आता, कोई नहीं, सिर्फ एक ही नाम था बस, हरि ध्वनि हो रही थी और उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण जो था वो उनका संकेत बन गया था, मतलब अगर किसी को घड़ा चाहिए तो वो कहता था कृष्ण कृष्ण, मतलब मेरे को घड़ा दे, तो दूसरा उसको घड़ा देता, बोलता कृष्ण कृष्ण ले घड़ा ले। एक बार बहुत पहले जब मैं मंदिर में गया था, करीब कई साल पहले चौपाटी मंदिर में, तो मैं सीढ़ियों के बीच में खड़ा था और किसी से बात कर रहा था मैं, तो एक ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा हरि बोल प्रभु, तो मैं उसको हरि बोल, मेरे को समझा नहीं, वो बोल रहा था हरि बोल मतलब बाजू हटो, तो वो बोल रहा था हरि बोल मतलब, तो हमारा क्या इस्कॉन में हर चीज हरि बोल है, किसी की शादी हुई तो हरि बोल, कोई मर गया तो हरि बोल हो गया उसका, तो हर चीज के लिए हरि बोल बोलते हैं। तो उसी तरह ये वहीं से परंपरा में आ रहे हैं, तो बताते हैं कि जो कृष्ण जो एक था नाम, बस वही खाली बोल रहे थे कि कृष्ण कृष्ण कही करे घटे र प्रार्थना, कि घट जो मांग रहे थे प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे को घड़ा दो, तो बोलते कृष्ण 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 कही करे घटे र प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण, कि वो घट दे रहे थे। और इस तरह से एक दूसरे से कर करके ये चल रहा था। तो क्या हुआ कि एक बंगाली वैष्णव था, वो बड़ा चालू था, उसने आगे क्या किया, चुपचाप एक घड़ा भर के लेके आया और चैतन्य महाप्रभु के पैर पे पानी डाल दिया, और खाली पानी नहीं डाला, और पानी डालने के बाद उन्होंने पानी पी लिया। तो ऐसा बताते कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो ये तीन चीज है ये हमारे लिए महाबल है ना, हमारी भक्ति का जो जो फाउंडेशन है, अगर हम इस तीन चीज पे खड़ा करते हैं जेन्यूनली। सो बोलते हैं कि भक्त पद धूली भक्त पद जाल, भक्त भक्त उसे तीन ही महाबल। बताते हैं कि भक्तों का भक्त पद धूली, इसलिए हम बताते हैं कि डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ ए डिवोटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भक्त पद जाल, और वह ना इसलिए कई बार हमने देखा है कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं हम उनका चरण पाद प्रक्षालन करते हैं उनका, और उसका चरणामृत लेते हैं, भगवान का जो पानी होता है उसको भी चरणामृत कहा जाता है। और भक्त भुक्त अवशेष, कि जो भक्त जो खाया हुआ जो जो बच जाता है, अगर ये तीन चीज अगर हम लेते हैं तो हमारी भक्ति एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। सो उसने क्या किया, वो पानी पी लिया, तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर ऐसा उसने कहां किया, मंदिर के अंदर किया, हालांकि मंदिर में भगवान की मूर्ति भी नहीं थी उस टाइम, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, तो बड़ा ही गुस्सा हो गए वो, और बहुत ही गंभीर स्वर में और चिल्ला के उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव इसने ये देखो क्या कर दिया, कि भगवान के मंदिर के अंदर इसने मेरे पैर पे पानी डाला, और केवल पानी नहीं डाला उसने पानी पी भी लिया, और इस अपराध के कारण अब पता नहीं मेरे को नरक में जाना पड़ेगा ना, भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे को कहीं अभी कुछ नहीं मिल सकता और मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तो तुम समझाओ इसको कि इसने ऐसा क्या किया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गए और बताते ना बोची पकड़ना ऐसा, तो उसका गया उसका गला पकड़ा और उसको बाहर लेके गया और फेंक दिया, बोले ये क्या कर रहा है। तो हालांकि बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अंदर से खुश थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी, लेकिन उसको बाहर से चेस्टाइजमेंट दिया और वो बंगाली वैष्णव को बाहर भगा दिया इस तरह से। और बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी अंदर आके चैतन्य महाप्रभु कहा कि प्लीज उसको माफ कर दो, वो बेचारा नया न्योफाइट डिवोटी है उसको मालूम नहीं है, तो उसको माफ कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने उसको माफ कर दिया, और उसके बाद ये सब जब क्लीनिंग हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ने सब डिवोटीज को कहा कि एक कतार में बैठ जाओ, और बाद में उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अच्छी तरह से काम नहीं किया तो मैं उसको सजा दूंगा, और सजा क्या दूंगा कि उस डिवोटी को मीठा भात स्वीट राइस और केक और ऐसा बना के दूसरे डिवोटी को खिलाना पड़ेगा। और एक और चीज आती है जो मैं भूल गया बताना, कि जब मंदिर धो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु जाके देख रहे थे कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, और जो अच्छी तरह से काम करता था उसको चैतन्य महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते थे, और जो अच्छी तरह से काम नहीं करता था उसको चेस्टाइटमेंट देते थे, उसको गुस्सा करते थे, डांटते थे। और इसीलिए चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा काम किया उसको जाके चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते थे कि तुम ही भाल कर या छे सिखा या अन्य रे ए मत भाल कर्म से हो ये करे। बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, आप दूसरों को भी सिखाओ ताकि वो भी अच्छा करे। तो बताते हैं कि ये परंपरा सिस्टम है, यदि कोई चीज हमको अच्छा आता है तो हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं उसको सिखाऊंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा मेरे से, अगर ये भावना रही तो ये क्या है कि ये एनवी डेवलप करती है, तो हमको दूसरों को बताना चाहिए। सो एनीवे इस तरह से भगवान मंदिर साफ करते हैं, और इस लीला के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद जी के गुरु, वह बताते हैं कि ये जो पूरा लीला है भगवान का, जो बहुत ही डिटेल में, हालांकि हमने इतने डिटेल में चर्चा नहीं की है समय के अभाव की वजह से, बताते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ एक चीज का हमको शिक्षा देता है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को हमें हमारे हृदय में आमंत्रित करे। और अगर हम हमारे हृदय में आमंत्रित करेंगे तो हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है, जैसे कि 6 प्रोमिनेंट अनर्थ, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ, ये सब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब तक हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में नहीं हो सकता। तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दिया उसमें पहले ही वह कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावानी निर्वापणम श्रेया कैलव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतासारणम सर्वात्मपरमजयते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, क्योंकि कृष्ण का संकीर्तन करके ही जो हृदय के अभद्र है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्रीमद् भागवतम भी कहता है कि श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्सौभद्राणी विद्युनोति सृहत्सताम। बताते हैं कि हमारे हृदय में जो भी ये जो अनर्थ है वो अनर्थ निवृत्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, हरिनाम का आश्रय लेना। यदि हम हरिनाम का आश्रय लेंगे तो ही हृदय में से जो अभद्र है वो धीरे धीरे से निकलेंगे। पर कई बार क्या होता है कि जब हम पहली बार आते हैं इस्कॉन में सोचते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत पायस समझते हैं कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, या मैं यहाँ से हूँ, या ऐसा हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मेरे घर में भगवद्गीता है, मेरे माँ बाप बहुत पूजा अर्चना करते आए हैं। तो कई बार आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो हृदय है कई बार हमको एक ग्लास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ट्रांसपेरेंट दिखता है कि मैं तो बहुत क्लीन हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और जब उनको बताते हैं कि आओ भक्ति करो तो सोचते हैं हमारे लिए तो बहुत आसान है और हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आते हैं और उस ग्लास के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का चम्मच डालते हैं और हिलाना चालू करते हैं तो क्या होता है कि नीचे जो कचरा जमा है वो धीरे 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 ऊपर आता है और वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो एक तरह से दूसरी तरफ देख नहीं सकते हम लोग, तो सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, मैं तो सोच रहा था मैं तो बहुत पावन व्यक्ति हूँ, अभी ये क्या अभी पतित कैसे हो गया। तो बताते हैं कि ये जो बहुत साल से, केवल एक साल ही नहीं, एक जन्म में नहीं, कई जन्म में हमने बहुत सारा कचरा एक्युमुलेट किया है हमारे हार्ट में, और जब हम पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र जपने की कोशिश करते हैं तो वो सब उठ के ऊपर आता है धीरे 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 धीरे। लेकिन बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि शांति, पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा अगर पेशेंट रखेंगे तो धीरे 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 क्लीन करेंगे। ऐसा बताते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, एक्चुअली समुद्र मंथन भी बहुत ही अच्छी कथा है, तो पहले जब मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला उसमें से, विष निकला। वो विष जब बाहर आया, शिवजी ने उस विष का पान किया और उसके बाद उसमें से अमृत निकला। तो बताते हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारा कचरा है, बहुत कुछ जमा है, कई बार हमको ये रियलाइज नहीं होता है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो बड़े बहादुर हैं और बस हरिनाम तो क्या है, बस खाली एक स्टेप और जंप मारूंगा तो गोलोक धाम पहुंच जाऊंगा। तो दादा इतना आसान नहीं है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। पर एक चीज अच्छा ये है हमारे मूवमेंट में कि भगवान बोलते थे कि हमने कितना भी काम किया, जैसे अगर क्या होता है कि हमारा शरीर खत्म हो गया तो चाहे हम PhD डॉक्टर क्यों नहीं होए या बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या बहुत बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं होए, एक बार हमारा देह खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ रहता नहीं हमारे पास। इसीलिए लोग बोलते रहे ऊपर क्या, साथ में क्या लेके जाना है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि यदि हम अगर मर भी गए बीच में तो हमने जितना परसेंटेज भक्ति की है तो नेक्स्ट परसेंटेज से हमको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने 27% की है इस लाइफ में तो नेक्स्ट लाइफ में 28% से शुरू होएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नेहा भी क्रम नासोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर छोटा सा भी हमने काम किया, जैसे अजामिल ने क्या किया था, सिर्फ एक बार चिल्लाया था नारायण, और वो नारायण कहने के एकदम पापी व्यक्ति था अगर आप उसका चरित्र पढ़ेंगे अजामिल का, लेकिन एक बार भगवान का नाम लिया और क्या मिला उसे हाईएस्ट परफेक्शन मिल गया और बाद में ही डेडिकेटेड हिज लाइफ एंड अचीव लव ऑफ गॉडहेड। तो इसलिए बताते हैं कि सबसे पहले जो हमको क्या करना है कि हृदय को साफ करना है, और हृदय को साफ करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि भगवान का नाम और उनके गुण और उनके रूप की चर्चा करना, और इसीलिए हम ये चीज कर भी रहे हैं कि भगवान का नाम सुनना और भगवान के बारे में कहना, इस तरह करेंगे तो हमारा हृदय धीरे धीरे साफ होगा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त होता है उसका हृदय उसी तरह से क्लीन होना चाहिए जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मर्जन गुंडीचा मंदिर को क्लीन किया था। और जो अपना हार्ट है उसको भी कोई अन्य अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हम सोचते हैं कि चलो हार्ट क्लीन करेंगे, भगवान को बिठाएंगे, फिर एक बार भगवान आ गए फिर मेरे को जो करना हो मैं कर सकता हूँ ना, और फिर मैं ये चीज प्राप्त कर लूंगा, वो चीज प्राप्त कर लूंगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं रहनी चाहिए। एक बार यदि हमने भगवान को बुलाया है तो केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि जो भी हमारी दूसरी अभिलाषा है उसको शून्य करना चाहिए। जब तक वो अभिलाषाएं शून्य नहीं होगी भगवान की भक्ति हमें मिलेगी नहीं। जैसे एक बार मैं लास्ट टाइम एक्चुअली बताया था बट क्योंकि रिलेवेंट है इसलिए वापस कहता हूँ कि एक व्यक्ति होता है बूढ़ा हो जाता है और अपने मृत्यु सैया पे सोया रहता है, तो सब लोग उसके परिवार उसके आजू बाजू में जमा हो जाता है और बोलते हैं आप राम का नाम लीजिए, अभी आपका अंत समय आ गया है। तो आँख खोलता है और तुरंत पूछता है महेश किधर है, उसका बड़ा बेटा, तो बोला महेश इधर ही है, आप राम का नाम लो, चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद आँखें खोलता बोलता अनिल किधर है, उसका दूसरा बेटा, बोलता अनिल भी इधर ही है, चिंता मत करो। फिर थोड़ी देर के बाद वापिस आँख खोलता है, बोलता सुनील किधर है, उसका सबसे छोटा बेटा, बोलता सुनील भी इधर है। तो फिर आँख बंद करता है तो सब लोग बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, अभी आपका अंत समय आ गया है, भगवान का नाम लो। बाद में बोलता रामू किधर है, उनका नौकर, तो बोलता रामू इधर ही आपके पैर के पास बैठा है। तो फिर बोलता अरे आप चिंता मत करो, आप बस राम का नाम लो। तो वो बोलता है कि अरे यार महेश भी इधर है, अनिल भी इधर है, सुनील भी इधर है, रामू भी इधर है, तो दुकान पे कौन है? मतलब उसका माइंड उधर ही लगा हुआ है। तो कई बार जब तक अगर हम अच्छी तरह से आश्रय नहीं लेते भगवान के नाम का तो इतना ईजी नहीं है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कार्टून देखा था, उन्होंने डीओटी को बोला था बनाने के लिए कि एक व्यक्ति अपने एक वाइफ उसकी हस्बैंड को कहती है कि चैन चैन चैन, और वो होता है कांट कांट कांट, मैं कर नहीं सकता। तो जब तक अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। एक बार एक व्यक्ति होता है जो सोने में डीलिंग करता है कमोडिटी मार्केट में, तो एक बार उसको बहुत जबरदस्त बुखार आ जाता है और उस बुखार की वजह से उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो एडमिट होता है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहता है वो, और डॉक्टर उसको करते रहते हैं, तो डॉक्टर नर्स से बात करता है आराम से, नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है, तो डॉक्टर पूछता है कितना है टेम्परेचर, तो बोलती है 104, 104 डिग्री बुखार है इसको। तो जैसे ही 104 सुनता है वो तुरंत चिल्लाता है बेच दो, 80 रुपए में खरीदा था मैंने, बेच दो 104 रुपए में बेच दो। तो मतलब उसका ध्यान वहीं रहता है कि नहीं 80 रुपए में खरीदा है, प्रॉफिट हो रहा है, 104 में बेच दो। एक बार और एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया दौड़ा दौड़ा, कहा कि मेरी माँ अभी मरने वाली है तो बेटे के नाते मेरा क्या कर्तव्य चरा मेरे को बताओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाके उसको बोलो प्लीज चैंट हरे कृष्णा। तो वो जाता है, बोलता है, वापस आता है दौड़ के, तो प्रभुपाद जी मेरी माँ कह रही है शी कैन नॉट चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने बोला गिनो, आई कैन नॉट चैंट हरे कृष्णा, 5-6 वर्ड बोल दिए, लेकिन इतना सिंपल नाम बोलने को नहीं होता है ना, खाली हरे कृष्णा बोलने के लिए नहीं आता। जब तक आदत नहीं पड़ती है, हमने अभ्यास नहीं किया है, तो इतना आसानी से ये चीज नहीं मिलेगा। हालांकि क्या होता है कई बार भगवान की मर्सी होती है कि भगवान ना अपनी कृपा से दे देते हैं, नहीं तो उन भगवान का नाम जीवा पर आना वह भी बहुत आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अपनी भौतिक इच्छा का त्याग नहीं कर सकता है और उसको भगवान की सेवा में रत नहीं लग करता है, उसके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह कहीं शांति नहीं मिलती। और कई बार हम लोगों को बताते रहते हैं कि चलो हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, लेकिन लोग लेते नहीं है। पर हमको ये समझना चाहिए कि जो सारे शास्त्र है उसका निचोड़ जो है हमारा जो कंक्लूडिंग पार्ट, हम यही कहना चाहेंगे कि ब्रह्म नारदीय पुराण और कलि संतरण उपनिषद में भी यही बात कही है कि कहते हैं कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता, कि तीन बार ये बात कही है कि केवल भगवान का नाम ही, केवल भगवान का नाम ही, केवल भगवान का नाम ही हमको तार सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो अगर तीन बार अगर शास्त्र में कोई बात कही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दिया गया है। और हमको क्या करना है, हमको कोई चीज का परित्याग नहीं करना है, कुछ चीज छोड़नी नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे वो गृहस्थ थे बहुत ज्यादा, उसमें से षड गोस्वामी जो थे वो सन्यासी थे, बाकी मोस्टली सब गृहस्थ लोग थे। और बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पे थे, जैसे किंग प्रताप रुद्र तो राजा थे और रामानंद राय जो थे वो मजिस्ट्रेट थे, गवर्नर थे मद्रास के, और बाकी भी कई लोग थे। और हम देखते हैं कि इवन जैसे बॉम्बे में हमारे कई भक्त लोग हैं, कई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कई लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कई लोग आईआईटी है, इस तरह से। तो हमको कुछ कम नहीं करना है। प्रभुपाद ने बताया कि हमारा जो कृष्ण भावना भावित जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही चीज लोगों को बताता है कि कृष्ण को जोड़ो बस, और कुछ नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर बस एक कृष्ण को ऐड कर दो, कृष्ण को सेंटर बनाओ, एवरीथिंग विल बिकम कृष्णमय। तो और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो हम आपसे बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी भगवान का नाम ले रहे हैं हम उनके बहुत कृतज्ञ है, और प्रार्थना करते हैं कि और अच्छी तरह से लीजिए। और यदि कोई भगवान का जप नहीं करता है तो कृपया इसको शुरू करने की कोशिश कीजिए। तो अब समय हो चुका है, हम कथा को यहीं विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न, टीका या टिप्पणी है तो कोई कह सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गुरुदेव की
जय,
और प्रेमानंदे। अनाउंसमेंट है कि कल नहीं और परसों रविवार के दिन एकादशी है, तो जो व्यक्ति जो भक्तगण एकादशी का उपवास करते हैं वो रविवार के दिन कर सकते हैं। और क्या अनाउंसमेंट है?
अरे
वाह, होशियार हो गए रे।